नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दल से गठजोड़ नहीं करेगी। उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मिलीभगत का आरोप लगाया तो उत्तराधिकारी के सवाल पर कहा कि ये चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मायावती फैक्टर कितना मजबूत है इस बार के यूपी चुनाव में, यही जानने के लिए बात करते हैं प्रेम शंकर मिश्र से, जो नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, अकेले लड़ने की बात कहते कहते यूपी के कई राजनीतिक दल अपने पार्टनर ढूंढने में लगे हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले की उन्होंने क्या वजह बताई है, किस भरोसे पर ऐसा कहा है उन्होंने?
अगर मायावती की पूरी राजनीति और बसपा की पूरी राजनीति देखें कांशीराम युग के बाद, तो जो पहला गठबंधन बसपा और सपा का हुआ था 1993 में, उसको लेके राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा रही थी। उस एक प्रयोग को अगर छोड़ दिया जाए तो बसपा के लिए गठबंधन कभी भी बड़ा फायदे का सौदा नहीं रहा है। बसपा ने कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, बसपा की को उतना अच्छा परिणाम नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी। उसके बाद अगर आप देखिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, जिस गठबंधन को लेकर बहुत हाइप दी गई और लगा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा, खासकर जब जातियों का अंकगणित जोड़ा जाता है तो कागजों पर गठबंधन बहुत मजबूत दिख रहा था। लेकिन उसके नतीजे अपेक्षाकृत बेहतर नहीं रहे, हालांकि मायावती जरूर 0 से 10 पर आ गई। तो कुल मिलाकर गठबंधन को लेकर बसपा का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उनके वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों के वोट जो है बसपा को ट्रांसफर नहीं होते। तो यही कारण है कि मायावती गठबंधन से परे होकर वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है।
पुराने अनुभव के आधार पर वो गठजोड़ से तो दूर होने की बात कह रही है, लेकिन एक पुराना फॉर्मूला फिर आजमाने की कोशिश कर रही है उनकी पार्टी। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है 2007 में इस पार्टी ने आजमाया था और उसको सफलता भी मिली थी, इस पर फिर से दांव लगाने की बातें आ रही है। बड़े पैमाने पर सवर्ण प्रत्याशियों को टिकट देने की तैयारी की बात आ रही है, क्या इस दांव में कोई दम नजर आ रहा है इस बार?
देखिए, 2007 की जो बसपा की सफलता थी, आमतौर पर उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन अगर आप उस पूरे रिजल्ट को विस्तार से एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे कि किसी भी राजनीतिक जो दूसरे राजनीतिक दल थे जो उनके जीत का फार्मूला था, उससे बसपा के जीत का फार्मूला बहुत अलग नहीं था। 2007 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय हुई थी, उनके अपने आंतरिक संघर्ष थे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ रही थी और ऐसे में विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी उभर रही थी, इसलिए उनको सभी वर्गों का वोट मिला। ये सही है कि उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को तरजीह दी थी, लेकिन उनके पास ब्राह्मणों के पास भी, या आप ये कह लीजिए मध्यम वर्ग के अपर क्लास जो आम तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता था, उसके पास कोई बहुत विकल्प नहीं था, इसलिए वो बसपा के साथ जुड़ा। अब रही बात इस बार सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले की, तो ये सही है कि बसपा ये दिखा रही है कि वो ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 चुनाव में बसपा के प्रदर्शन को देखें, बसपा के वोट शेयर को अगर देखें, तो उसमें कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता है। देखिए, 2007 में जब बसपा सत्ता में आई थी, जब उसने 206 सीटें जीती थी, तो उसको 30% वोट उत्तर प्रदेश में मिले थे, और 2012 में जब वो सत्ता से बाहर हुई थी, महज 80 सीट पाई थी, तब भी उसका वोट शेयर लगभग 26% था। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2014 जो बसपा का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है, जिसमें वो 0 सीट पर थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, उसमें भी बसपा के पास लगभग 20% वोट थे। और 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें बसपा पहली बार दहाई पे आ गई, 19 सीटें उसको मिली कि अपना वो एक MLC बना पाने की स्थिति में नहीं थी, उस बार भी बसपा को लगभग 22.5% वोट मिले थे। और दिलचस्प बात यह है कि उससे लगभग 2.5 गुना अधिक सीटें पाने वाली समाजवादी पार्टी की जो 47 सीटें थी, उससे भी बसपा का वोट शेयर अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर था। कहने का लंबो लुआब यह है कि बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर चुनाव में लगभग 19 से 20% वोट शेयर पर रहती है। इससे साफ है कि उसका अपना जो दलित वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और उसके साथ जो प्रत्याशी होते हैं और जो अन्य समीकरण होते हैं, उनकी जात के या उनके प्रभाव क्षेत्र के वोट जुड़ के उनको 19 से 20% वोट शेयर बसपा का हो जाता है। समस्या क्या है बसपा के साथ कि ये वोट शेयर उसको जिताओं में कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि बसपा, अगर आप एक दूसरा समीकरण और दूसरा आंकड़ा और भी देखें तो आमतौर पर बसपा के वनस्पति दूसरे राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं अगर वो हारते हैं तो जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उनकी अधिक होती है और सबसे कम जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवार बसपा के होते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि बसपा का जो अपना दलित वोट बैंक है 14% 15% का वोट बैंक हमेशा इंटैक्ट होता है। इस कारण से उसका कोई भी उम्मीदवार आमतौर पर 2/3 सीटों पर बसपा का उम्मीदवार 12% 15% वोटों के साथ शुरू होता है। इसलिए किसी भी सीट पे आमतौर पे बसपा की उम्मीदवारी को हल्के में नहीं लिया जाता है। इस बार चुनाव में बसपा ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है, ये भी कहा जा रहा है कि बसपा बड़े पैमाने पर मुसलमानों को भी टिकट देगी जिससे वो अपनी राजनीतिक स्थिति बेहतर कर सके। समस्या क्या है बसपा के साथ? समस्या है भरोसे का। बसपा ने मुसलमानों को जोड़ने की पहले भी कोशिश की लेकिन जब उसके नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों पर उपेक्षा धोखा देने का आरोप लगाया। दूसरी बात यह है कि जो बसपा सरकार के, चाहे वो भाजपा के साथ उसकी सरकार रही हो या चाहे 2007 में उनकी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, उस समय भी SC/ST एक्ट के मुकदमे का जो मसला था उसने काफी तूल पकड़ा था। तीसरी बात यह है कि जो मध्यम वर्ग है या चाहे आप ब्राह्मण कह लें या अपर क्लास कह लें, आमतौर पर उनके जो इशू हैं वो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ में सत्ता में होने के साथ साथ उनकी स्थिति खराब नहीं है। कोई एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अभी उत्तर प्रदेश में क्रिएट होती नहीं दिख रही है। तो ऐसे में सवर्णों को जोड़ने का मायावती का दांव कितना सफल होगा ये आज की तारीख में कहना अभी मुश्किल है। तो इसके सफलता की संभावनाएं उतनी बेहतर नहीं दिखती हैं जितनी 2007 के आसपास दिखती हैं।
और इस बार का चुनाव भी क्या जैसा उन्होंने हिंट दिया है कि बस उनके नाम के आसपास ही घूमने वाला है? क्योंकि परिवारवाद पर और उत्तराधिकारी के सवाल पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि CM योगी की तरह उनका भी कोई परिवार नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनके भतीजे आकाश आरन तो कई बार उनके साथ मंच पर दिख चुके हैं और ये कहा जा रहा था कि अब उन्हें आगे लाने की कोशिश हो रही है।
निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे आरोप हैं जिससे बसपा को हमेशा जूझना पड़ता है। और अगर आप इस बार भी बसपा की राजनीतिक यात्रा देखें या उनकी पूरी प्रचार शैली देखें या जो उनका अभियान देखें, वो भी एक तरह से दो परिवारों के हाथ में है। एक में उनके भतीजे आकाश आनंद नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरा सतीश मिश्रा का परिवार है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके दामाद पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवारवाद के आरोप को सीधे तौर पर नकार नहीं सकती हैं। लेकिन यह भी एक पक्ष है कि जो मायावती का सपोर्टर है, मायावती का जो कोर वोटर है, उसको इन आरोपों से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संकट जो बसपा के सामने है, मायावती के सामने है, वो दूसरे हैं। पहला संकट तो यह है कि उसके ऊपर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगता है। ये आरोप और तमाम मुद्दों पर उनका रुख नरम भी रहा है। वनस्पति भाजपा के वो सपा और कांग्रेस पे बहुत मामलों में अधिक हमलावर रही हैं। इसका सीधा सीधा असर ये पड़ेगा कि जो एंटी बीजेपी वोट है, खासकर अल्पसंख्यक वोट है, उनमें कहीं ना कहीं बसपा से जुड़ने में एक हिचकिचाहट महसूस होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि बसपा सुप्रीमो की जमीनी सक्रियता लगभग शून्य है। लगभग एक दशक बाद, सत्ता से बाहर होने के एक दशक बाद, वो केवल एक बार राज्यपाल को कानून व्यवस्था के मसले पर ज्ञापन देने गई थी और अब रैलियों और कार्यक्रमों का दौर अब उनका शुरू होगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि मायावती की राजनीति की यही शैली रही है, लेकिन पिछले एक दशक से या पिछले 7-8 साल में राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आया है। लोग जागरूक हुए हैं, मुद्दों को लेकर उनकी समझ बेहतर हुई है। तो ऐसे में वो अपने नेता से अपेक्षा करते हैं कि वो उनके सवालों पर, उनके मुद्दों पर, उनके समस्याओं पर जमीन पर उतरें। खासकर इस समय पिछले 7 साल में जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सिनेरियो चेंज हुआ है, नई भाजपा के उभार में जो सबसे बड़ा संकट यह है कि भाजपा सत्ता में रहते हुए भी किसी विपक्षी दल की अपेक्षा कहीं अधिक सक्रिय है। तो ऐसे में जब आनुपातिक तौर पर तुलना होती है तो विपक्ष, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, वो कहीं सक्रियता में टिकता नहीं है। और मायावती के साथ तो ये सबसे बड़ा संकट है कि आज तक किसी भी कोई घटनाक्रम रहा हो या कोई और बड़ा उत्तर प्रदेश का मुद्दा रहा, वो कभी मौके पर पहुंची नहीं है। उनके दूत पहुंचते हैं, उनके संदेश पहुंचते हैं और अब उनके पीठ पहुंचते हैं। तो इसके नाते जो एक जमीन बननी चाहिए, एक हवा बननी चाहिए, वो उस हवा बनाने में कहीं ना कहीं मायावती पीछे दिखती है और ये उनकी राजनीति का सबसे बड़ा संकट है।
और जिस तरह से वो बीजेपी और सपा पर मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रही हैं, तो अगर ऐसा है तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि बसपा के पास इसकी क्या काट है? क्या ऐसा कुछ उन्होंने बताया है कि वो इसका मुकाबला किस तरीके से करेगी, उनकी रणनीति क्या होगी?
नहीं, देखिए, मायावती और बसपा का यह डर बहुत स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अमूमन कहीं न कहीं पोलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है, पहले का चुनाव भी बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के चेहरे पर विकास का तिलक लगाकर और ध्रुवीकरण का कवच कुंडल पहनकर चुनाव के मैदान में उतरती है। समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम समीकरण हमेशा से एक प्रभावी समीकरण रहा है। पिछले चुनाव में कहीं न कहीं सपा और बसपा में मुस्लिम वोटों का बड़े पैमाने पर डिवीजन हुआ था, इसीलिए उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। इस बार समाजवादी पार्टी चाहती है कि अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कर दे। यही वजह है कि अखिलेश यादव मंच से मोहम्मद अली जिन्ना तक की तारीफ करते हैं, जिनको लेकर विभिन्न तरह की धारणाएं, यहां तक कि भारतीय मुसलमान भी जिन्ना को लेकर, जिन्ना को नायक मानने को लेकर आश्वस्त नहीं है। और आप देखिए कि जो अखिलेश यादव के मुंह से जिन्ना निकला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया। उनके बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक हर मंच पे जिन्ना की बात उठा रहे हैं। आप देखिए, कैराना का पलायन एक तरह से फिर से सुर्खियों में आ गया है, राम सुर्खियों में आ गए हैं। अमूमन तौर पर धार्मिक मुद्दे एक तरह से विकास के सवालों से इतर ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। तो ऐसे में बसपा का ये डर जो है बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अगर ये ध्रुवीकरण हुआ और उसके उसके जवाब में जो प्रतिक्रियात्मक ध्रुवीकरण होता है, जो रिवर्स पोलराइजेशन होता है, अगर रिवर्स पोलराइजेशन होता है तो उसका भी नुकसान कहीं न कहीं बसपा को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब उसके साथ एक बड़ा संकट ये भी हो गया है कि आप पिछले 5 से 10 सालों में देखिए, जो बसपा की पूरा वोट का चंक बनता था, दलितों के साथ साथ जो अति पिछड़े होते थे या दलितों के आसपास की जो जातियां होती थी वो बसपा के साथ जुड़ती थी, उसके बाद जो प्रत्याशी होता था वो अपना वोट बेस लाता था। धीरे धीरे आज की तारीख में बसपा के जितने भी पिछड़े नेता हैं, पिछड़े या पिछड़े नेता हैं, या अधिकांश ब्राह्मण चेहरे या सवर्ण चेहरे थे, पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और 2019 में सपा से गठबंधन टूटने के बाद अधिकांश उसके अति पिछड़े नेता एवं मुस्लिम चेहरे भी उस सपा का दामन थाम चुके हैं। तो आज की तारीख में जिसको कहते हैं कि दलित प्लस वोट जो चाहिए, उसके लिए एक कोई बड़ी साफ रणनीति या कोई बड़ा चेहरा आज की तारीख में बसपा में नहीं दिखता है। ऐसे में अगर कहीं पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन कहीं जात की दीवारों को तोड़ता है और इसका सीधा सीधा नुकसान बसपा को उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये मायावती का डर है और इसीलिए वो साफ तौर पर सपा और भाजपा के मिलीभगत का आरोप लगा रही है।
जी प्रेम शंकर मिश्र जी, बसपा की चुनावी राजनीति के इस विश्लेषण के लिए आपका शुक्रिया।